بسم الله الرحمن الرحيم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. جو آدمی ناپسند سمجھتا ہو، پسند نہ کرتا ہو، یہ کہ وہ آدمی کفر کے اندر لوٹ کر کے جاوے، جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے آگ میں ڈالے جانے کو آدمی پسند نہیں کرتا، ذرا سی دیر کے لیے بھی آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا، اسی طریقے سے کفر میں لوٹ کر کے جانا پسند نہیں کرتا، ذرا سی دیر کے لیے بھی کفر میں جانا پسند نہیں کرتا، اور یہ کفر سے کراہت اور نفرت یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، من الایمانی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کفر میں نہ جاوے، چند لمحوں کے لیے بھی کفر میں نہ جاوے۔ جس طریقے سے معمولی آگ کو آدمی پسند نہیں کرتا، معمولی کفر کو بھی آدمی پسند نہ کرے۔ یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا خلاصہ۔ دوسری بات سمجھو، کفر سے انتہائی درجے کی نفرت یہ ایمانی عمل ہے، کفر سے انتہائی درجے کی نفرت یہ ایمانی عمل ہے۔ تیسری بات، یہاں سے ضد کا بیان ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، کسی چیز کو اس کی ضد سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ ابھی تک جو بیان تھا وہ کیا بیان تھا؟ یہ کرو تو ایمان، یہ کرو تو ایمان، یہ کرو تو ایمان۔ اب یہ ہے کہ یہ نہ کرو تو ایمان، یہ ہے ضد۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہیں گے؟ منفی پہلو سے اعمال ایمان کا بیان ہے، منفی پہلو سے اعمال ایمان کا بیان ہے، نگیٹیو سائٹ سے اعمال ایمان کا بیان ہے۔ سابقہ باب سے ربط اس طریقے سے ہوگا، نمبر ایک، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت یہ ایمان ہے، تو کفر سے نفرت کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ پیچھے اللہ رسول کی محبت کو ایمان کہا گیا، مستقل باب آیا، تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ایمان ہے، تو کفر سے کراہت یہ بھی ایمان ہے۔ دوسرا ربط کیا ہوگا؟ انسان کو جب کفر سے طبعی کراہت ہوگی تو پھر وہ فتنوں سے بھاگے گا، کفر سے طبعی کراہت ہوگی تو وہ فتنوں سے بھاگے گا، چونکہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کفر کا فتنہ ہے، کفر کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کفر سے طبعی کراہت ہوگی تو انسان فتنوں سے دور بھاگے گا اور اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ یہ ہو گیا سابقہ باب کے ساتھ ربط۔ اس ترجمۃ الباب سے ہم کو ایک بڑی بات سیکھنے کو ملی، कि इंसान का कुफ्र से नफरत करना ये ईमान के मजबूत होने की दलील है कि कोई आदमी कुफ्र से नफरत करे, कुफ्र को नापसंद करे, कुफ्र से कराहत होवे, ये ईमान के मजबूत होने की बहुत बड़ी दलील है। इसलिए कि जिसका ईमान ढीला ढाला होगा वो कुफ्र से भी मोहब्बत करने लगेगा, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। इस ज़माने में बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन ये भी ठीक है, ये भी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, राम रहीम सब बराबर है, ये हैं। तो इस तर्जमतुल बाब ने ये सिखला दिया कि ईमान की मजबूती की अलामत है कि आदमी कुफ्र से नफरत करने वाला बने, और ये भी ईमान के तकाज़ों में से एक अहम तरीन तकाज़ा है। जी हो गया। ये हदीस अभी कुछ वक्त पहले गुजरी है लेकिन सनद बदल गई है, इसलिए हदीस में तकरार नहीं है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये तर्ज है कि एक ही हदीस को अलग सनद से लाएंगे तो फिर ये समझ लेने का कि दोनों अलग अलग है, मज़मून एक, सनद बदल गई तो हदीस गैर मुकर्रर। सुलेमान इब्ने हर्ब इब्ने बजील इमाम बुखारी के उस्ताद है, कहते हैं कि हमको शौबा रदी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस सुनाई। वो कतादा इब्ने दी आमा से नकल करते हैं, वो हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीज़ें जिस आदमी के अंदर होगी वो ईमान की मिठास को पाएगा। ईमान की मिठास का एक मतलब ये है कि उसको लज्जत मालूम होगी ताअतों में, इबादत करने में उसको लज्जत मालूम होगी, दीन के लिए मशक्क़त उठाने में उसको मज़ा मालूम होगा, और दुनियाए फानिया से वो एहरास करेगा। ये तीन बातें याद रखने की कि हलावत ईमानी यानी इबादतों में लज्जत मालूम करेगा, दीन के लिए मशक्क़त उठाने में उसको मज़ा मालूम होगा, और दुनियाए फानिया से वो आदमी एहरास करने वाला होगा। और वहाँ पर आपको बतलाया गया था कि बहुत से हजरात ने हिस्सी हलावत भी मुराद ली है, ज़ाहिरी मिठास हलावत महसूसा भी मुराद ली है। चुनांचे हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को वो मिठास महसूस हो रही थी, हिजरत से पहले मक्की ज़िंदगी के अंदर मक्का वाले इनको मार रहे हैं, सता रहे हैं, गरम गरम चीज़ों पर लिटा रहे हैं, और हज़रत बिलाल अहद 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 अहद, गोया उनको अहद बोलने के अंदर ज़ाहिरी मिठास महसूस हो रही है और वो तकलीफ़ उनको ज़रा भी महसूस नहीं हो रही है। ये है हलावत ईमानी का ज़ाहिरी एहसास। हज़रत बिलाल के बारे में आता है कि जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो घर वाले कहने लगे वाह करबा, वाह बिलाल की तकलीफ़, बिलाल जा रहे हैं। तो हज़रत बिलाल कह रहे हैं वाह तरबा, अरे क्या मज़ा आ रहा है। घर वाले कह रहे हैं तकलीफ, ये कह रहे हैं या तरबा वाह तरबा क्या मजा आ रहा है, और मरते मरते शेर पढ़ रहे हैं। हालांकि मौत की करवाहट होती है, रूह निकलने की तकलीफ होती है, लेकिन ये मरते मरते शेर पढ़े। गदन अलकल अहिब्बा मोहम्मदन व सहबा, गदन अलकल अहिब्बा व मोहम्मदन व सहबा, कि कल तो मैं मिलूंगा जाकर के दोस्तों से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबाए किराम से आखिरत में जाके उनकी मुलाकात करूंगा। ये मेरी मौत कोई गमी की चीज थोड़ी है, ये तो खुशी की चीज है कि वहां मर के दोस्तों से मुलाकात होगी। मौत की करवाहट के ऊपर हुजूर की मुलाकात की मोहब्बत की मिठास गालिब आ रही है, इसीलिए मौत की करवाहट उनके लिए हैच हो गई। और हुजूर की और सहाबा जो पहले इंतकाल कर गए, उनकी मुलाकात की मोहब्बत की मिठास उनके ऊपर गालिब आ गई। और ये कब होगा? कल्बे सलीम, कि आदमी का दिल गंदगियों से सलामत होता है, तो फिर ऐसे मौके के ऊपर ईमान का मज़ा उसको मालूम होता है। दिल के अंदर नफसानी ख्वाहिशात न हो, दुनिया की गंदी मोहब्बत न हो, दुनिया की गफलत न हो, तो ऐसे वक्त के ऊपर ईमान शहद से भी ज़्यादा आदमी को मीठा मालूम होता है। यह है हलावत ईमानी। और अल्लाह और उसके रसूल उस इंसान को ज्यादा महबूब होवे अल्लाह और रसूल के सिवा से, अल्लाह और उसके रसूल उस इंसान को ज्यादा महबूब होवे अल्लाह और उसके रसूल के सिवा से। यहाँ तस्निया की जमीर फिर आ गई, वहां तौजीह बतला दी थी, यहाँ एक जायद तौजीह जहन में रखो। तस्केरा मोहब्बत का हो रहा है, तस्केरा हो रहा है मोहब्बत का, और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत लाजिम मलजूम है। अल्लाह की मोहब्बत तो रसूल की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत तो अल्लाह की मोहब्बत, लाजिम मलजूम है। इसीलिए दोनों को जमा कर सकते हैं, जमा करना जायज है। जैसे हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने एक मर्तबा बारी ताला को ख्वाब में देखा। अल्लाह के बहुत से बंदों को बारी ताला के ख्वाब में जियारत होती है, हमारे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी बकसरत जियारत होती थी। तो हजरत राबिया बसरिया कहने लगी, अल्लाह मैं तोबा करती हूँ, आप जरा मुझे माफ़ कर दीजिए। किस चीज़ की माफ़ी? तो कहा, मेरे दिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा है, और हुजूर की मोहब्बत के मुकाबले में अल्लाह आपकी मोहब्बत थोड़ी कम मालूम होती है, इस पर जो है मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो बारी ताला के जनाब से इरशाद हुआ कि राबिया, हमारे नबी से मोहब्बत वो हमारी ही खातिर मोहब्बत है, इसीलिए इसमें कोई कमी की बात नहीं है, दोनों एक ही है। इसीलिए मिम्मा सिवा हुमा के दोनों यहाँ मोहब्बत का तस्केरा हो रहा है, और अल्लाह की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, दोनों लाजिम मलजूम है। इसीलिए ऐसे मौके के ऊपर तस्निया की जमीर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आदमी किसी बंदे से मोहब्बत करे, अल्लाह ही के वास्ते मोहब्बत करे। आज जिन जिन लोगों से दोस्तियां हैं ना तुम्हारी भाई, आज बैठ के रात को एक मुराकबा कर लो कि मेरी फुलां से दोस्ती है, क्यों दोस्ती है। हर एक दोस्त की दोस्ती का मुराकबा कर लो आज। अगर वो दोस्ती अल्लाह वास्ते हैं तो ठीक है, खुदा का शुक्र अदा करो। और जो दोस्ती ऐसी है कि जिसमें दुनियावी कोई गर्ज है, तो फौरन या तो वो दोस्ती ख़त्म कर दो, या तो वो दोस्ती को अल्लाह की निस्बत पर बदल दो, दो में से एक काम कर लो। इसलिए कि दुनिया की गर्ज से दोस्ती होगी तो या लैतनी लम अत्तखिस फुलानन खलीला लकद अदल्लनी अनी ज़िक्री बाद इज जाअनी, कहीं उसका मिज़दाक न बन जाए। इसीलिए आज ये काम कर डालो, जितने से भी दोस्ती है उसका आप जायजा ले लो। फुलां से दोस्ती अल्लाह वास्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको इत्तिला भी कर दो कालू भाई मुझे आपसे दोस्ती है, अल्लाह वास्ते दोस्ती है भाई, ये हदीस में है इसलिए मैं तुमको बतला रहा हूँ ताकि तुम्हें बदगुमानी ना हो। और जहाँ भी लगा कि इसके साथ मोहब्बत अल्लाह वास्ते नहीं है तो या तो मोहब्बत को अल्लाह वास्ते कर दो या ये कि जो है मोहब्बत ख़त्म कर दो। और मैं बुखारी शरीफ को सामने रखकर मस्जिद में बैठकर आप सबको कहता हूँ कि मुझे आप सब से अल्लाह वास्ते मोहब्बत है। وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ اور جو آدمی ناپسند سمجھتا ہو یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جاوے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے اس کو کفر سے نجات دے دی، چونکہ ایک مرتبہ کفر سے اللہ نے بچا لیا، اب دوبارہ کفر کے اندر جانے کو وہ بالکل ناپسند سمجھتا ہو، کما یکرہ ان یلقا فی النار جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ چونکہ اس وقت صحابہ نئے نئے کفر سے ایمان لائے تھے اس لیے یہ یعود کا لفظ ہے۔ کیا خلاصہ؟ اعلیٰ درجے کی کفر سے کراہت ہونی چاہیے تب جا کے ایمان مضبوط ہوگا۔ جی بابو تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یہ فی ہے نا فی الاعمال کا، فی ظرفیہ بھی بن سکتا ہے اور فی سببیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کا فی ہو سکتا ہے، یعنی ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تفاضل زیادہ ہونا اعمال کے اندر، ایمان والوں کا اعمال کے اندر ایک دوسروں سے زیادہ بڑا کم ہونا، یہ ظرفیت کا معنی ہو گیا۔ اور فی سببیہ لیوے تو کیا مراد؟ بسبب الاعمال، ایمان والوں میں جو کمی بیشی ہے، اونچا نیچا درجہ ہے، یہ اعمال کے سبب سے ہے کہ ایک آدمی اعمال زیادہ کرتا ہے اس کا درجہ اونچا، دوسرا آدمی اعمال کم کرتا ہے تو اس کا درجہ نیچا۔ تو کمی بیشی، اونچا نیچا، یہ درجہ اعمال کے سبب سے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا بھائی کہ اسلام کے اندر درجات کا تفاوت اعمال کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ایمان لانے کے بعد درجات کی کمی بیشی، کسی کا درجہ بڑا کسی کا درجہ چھوٹا، اس کی بنیاد مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، ظاہری حسن و جمال نہیں ہے، بلکہ اس تفاوت کا بنیادی سبب ہے اعمال۔ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، اتباع سنت کے مطابق ہوں گے، وہ آدمی اونچے درجے کا آدمی سمجھا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب کتاب الایمان شروع کیا تھا تو وہاں یزید و انکس کا لفظ تو آ ہی گیا تھا، پھر یہاں تفاضل الگ سے لانے کی کیا ضرورت؟ تفاضل کا مطلب کیا؟ ایمان کے اندر کمی بیشی، عام اہل ایمان کے اندر کمی بیشی، اونچ نیچ کا درجہ، تو وہاں شروع کتاب الایمان میں آ ہی چکا تھا، پھر یہاں تفاضل اور لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر ایک، شروع کتاب الایمان کے اندر اجمال تھا اور یہاں تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تکرار نہیں کہی جائے گی۔ نمبر دو، وہاں طبعاً تھا، یہاں مستقلاً ہے، وہاں طبعاً تھا، یہاں مستقلاً ہے، وہاں ایک لمبا چوڑا باب قائم کیا اس کی کتاب الایمان اور اس کے ذیل کے اندر کہہ دیا یزید و ینکس، یہاں مستقلن لائے. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت سمجھ لو. ہاں تیسری ایک وجہ سمجھو, وہاں تفاضل فی نفسی تصدیق ہے, یہاں تفاضل اعمالی ہے. یہ تیسرا فرق, وہاں تفاضل ہے فی نفسی تصدیق کہ کس کے دل کے اندر تصدیق زیادہ کم, تفاضل فی تصدیق, اور یہاں ہے تفاضل فی الاعمال کہ کون آدمی اعمال کے اندر کم و بیش ہے, آگے ہیں پیچھے ہیں. یہ تین فرق ذہن کے اندر رکھو دونوں کے درمیان. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت سمجھو, کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اس اختلافی مسئلے میں اپنے موقف کو, اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مسلسل ابواب لاتے ہیں امام بخاری. اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مسلسل ابواب لاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یعنی بعض مرتبہ تو آدمی کنٹال جاتا ہے کہ یہ کیا کہ روز بخاری کا سبق شروع ہوا نہیں کہ مرجیہ کی تردید, کرامیہ کی تردید, جہمیہ کی تردید, سنتے سنتے کان پک جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل وہ ابواب لاتے چلے جاتے ہیں اور جو ہے ایک ہی چیز کے اوپر وہ زور دیتے ہیں. تو وہ یزید و ینکس والی بات جو ہے اب تفاضل کے انداز میں ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. تو باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال, اس ترجمۃ الباب سے یہ بات سیکھنے کو ملی, تمام مومن نفس ایمان میں برابر برابر ہے, البتہ اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے. ایمان میں سب برابر, اس لیے کہ ایمان مجمل ایمان مفصل ہر ایک کو لانا ہے. اعمال میں کمی بیشی ہے, کسی کے اعمال زیادہ کسی کے اعمال کم. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ کفر اور متعلقات کفر سے دور رہے گا تو اعمال کے اندر تفاضل ثابت ہو جائے گا. آدمی کو کفر سے دور رہنا پڑے گا, متعلقات کفر سے دور رہنا پڑے گا, تو پھر آدمی کے اعمال کے اندر زیادتی ثابت ہو جائے گی. تو یہ باب اہل ایمان کا اعمال کے اندر تفاضل کم بیش ہونا بیان کرنے کے اندر یہ باب ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. جانب السیلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے اسماعیل, یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں. بھانجے صاحب اپنے ماموں جان سے روایت نقل کر رہے ہیں, ماموں جان یعنی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے, لیکن امام مالک کی سند سے یہ جو روایت آ رہی ہے یہ موطا میں نہیں ہے. ان عمرو بن یحیی المازنی وہ اپنے والد یحییٰ المازنی سے روایت نقل کرتے ہیں اور وہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں جن کا نام ہے سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سعید خدری آپ کا لقب ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, ارشاد فرمایا جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے, یعنی قیامت کے میدان میں حساب کتاب ہو گیا, جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا سب جنت میں چلے گئے, جن کے اعمال زیادہ تھے نیک ہو گئے جنت میں, شفاعت کی برکت سے جنت میں چلے گئے, نبیوں کی شفاعت, شہداء کی شفاعت, اولیاء کی شفاعت, یعنی جتنے بھی لوگوں کو جنت میں جانا تھا وہ سب جنت کے اندر چلے گئے, اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے. قیامت کا میدان خالی, اس لیے کہ حساب کتاب کے بعد ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر چلا گیا, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں, آراف والے آراف کے اوپر چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, کس کو ارشاد فرمائیں گے؟ ملائکہ کو فرمائیں گے یا شفاعت کرنے والے انبیاء اور صالحین کو فرمائیں گے؟ یعنی سب ہو چکا, جنتی جنت میں گئے, جہنمی جہنم میں گئے, اس کے بعد باری تعالیٰ ایک بات ارشاد فرمائیں گے, اور باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ملائکہ کو یا انبیاء اور صالحین کو ارشاد فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جاؤ نکالو, جاؤ نکالو, جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکالو جہنم میں سے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم میں سے نکالو, یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اور وہ جہنم میں, سب کو نکالو, نکال کر کے لاؤ سب کو. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان تمام لوگوں کو اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا, اور یہ ہیں اللہ کے آزاد کردہ بندے جہنم سے. یہاں روایت اجمال ہے, 44 نمبر کی روایت نکالو, یہاں یہی روایت تفصیل سے آئی ہے 44 نمبر کے اوپر, حدیث نمبر 44. یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہے نا کوئی بھلائی, تو وہ بھی نکالا جائے گا جہنم میں سے جو کے دانے کے برابر. ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر, گیہوں کے دانے کے برابر بھی ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا. ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر, دیکھ لیا معمولی شعاع میں جو نظر آتا ہے نا ذرہ ہوا میں اڑتا ہوا, رج کن گجراتی میں کہتے رج کن ذرہ, یعنی یہ دھوپ جو آ رہی ہے یہ کھڑکی سے اس میں سائڈ پر بیٹھنے والے کو باریک باریک ذرات نظر آئیں گے, اس کو کہتے ہیں ذرہ. اتنا بھی ایمان ہوگا, یا یہ کہ ذرہ بول کر کے پیلے رنگ کی چھوٹی چیونٹی مراد ہے, ایک دم چھوٹی پیلے رنگ کی چیونٹی, اتنا ایمان بھی ہوگا تو ان کو نکالا جائے گا. دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرم کا معاملہ فرمائیں گے, ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کے دل میں تو اس کو جہنم سے نکالنے کا باری تعالیٰ हुक्म देंगे। अब देखिए यहाँ पर लफ्ज़े खरदलिन मिन ईमानिन, यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान से अमल मुराद लिया कि जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी अमल होगा उसको निकाला जाएगा। या ये कि ईमान से ईमान ही रहने दो, जिसके दिल के अंदर मामूली सा ईमान होगा वो ही उसको भी निकाला जाएगा। बास तुरुक में मिन खैरिन का लफ्ज आया है, मिन ईमानिन के बजाय क्या लफ्ज आया है, मिन खैरिन। अगर मिन खैरिन है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल खत्म हो जाएगा, तो फिर वो जो है वो जुज मुरक्कब वगैरह पर इस्तिदलाल नहीं कर सकते। तो ईमान मामूली सा हो, मामूली सा अमल हो, मामूली सी भलाई भी होगी तो उन लोगों को जहन्नम की आग में से निकाला जाएगा। देखिए याद रखिए, या ईमान को खरदल के साथ तशबीह दी गई ताकि शनाख्त आसान हो जावे, वरना ईमान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको तराजू में रख कर के तोला जावे। राई के दाने को तोलना मुमकिन है लेकिन ईमान कोई तोली जाने वाली चीज नहीं है। इसीलिए समझाने के लिए ये बात कही गई है। तो बाज मर्तबा क्या होता है, एक अकली चीज को, माकूल और मानवी चीज को हिस्सी चीज से तशबीह देते हैं ताकि समझ में आ जावे। ईमान कोई जाहिर में नजर आने वाली चीज नहीं है, वो मानवी चीज है, इसीलिए उसको राई के दाने से तशबीह दे करके समझाया गया, समझाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो ये मिन खरदल का लफ्ज बतलाता है अदना दर्जे का ईमान, अदना दर्जे का सगीर ईमान, कैफियत के एतबार से जरा सा ईमान, चपटिक, हमारे यहाँ कहवे हो चपटिक, जरा सा हल्का सा मामूली सा ईमान कैफियत के एतबार से, का ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला जन्नत में भेज देंगे। देखो एक चीज याद रखो, ईमान मख्फी चीज है, ईमान मख्फी चीज है, लेकिन महसूस चीज से समझ में आती है, महसूस चीज से समझ में आती है। जैसे कि एक हदीस शरीफ में है कि जब तुमको तुम किसी को नमाज पढ़ते देखो तो उसके ईमान की गवाही दे दो कि आदमी ईमान वाला है। अब ईमान तो मख्फी चीज है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसको तुम नमाज पढ़ते देखो तो उसके ईमान की गवाही दे दो। अब नमाज नजर आने वाली चीज है, ईमान मख्फी चीज है, लेकिन वो मख्फी चीज महसूस चीज के जरिए समझ में आ रही है, इसीलिए खुद हुजूर ने फरमा दिया जिसको तुम नमाज पढ़ते देखो उसके ईमान की तुम शहादत दे दो, गवाही दे दो। फयुखरजून मिन्हा, अब जहन्नम में से निकाले जाएंगे ऐसे ऐसे लोग, कदिसवद्दू, जो काले कोयले हो चुके थे, जो काले कलोटे जल के हो गए थे, वो सब को जहन्नम की आग से निकाला जाएगा मामूली से ईमान की बरकत से। एक बात और यहां रुक करके समझ लो, अमल का ताल्लुक, जब आदमी अमल करता है उस वक्त आजा से होता है। इंसान जब अमल करेगा तो जितनी देर तक अमल करेगा इतनी देर तक अमल का ताल्लुक आजा से होता है। मसलन नमाज पढ़ी, मसलन ये कि अल्लाह के रास्ते में चला फिरा, चलत फिरत की, तो जाहिरी आजा से उसका ताल्लुक है। लेकिन जब वो जाहिरी अमल खत्म हो जाता है तो फिर उस अमल का ताल्लुक दिल से हो जाता है, उस अमल का ताल्लुक दिल से हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता, मिट नहीं जाता, उस अमल का ताल्लुक दिल से हो जाता है। ये बड़ी बारीक बात अच्छी तरीके से समझो कि हदीस में मिन खरदल मिन ईमान और मिन खैर का जो लफ्ज आया है तो उसको अच्छी तरीके से समझो कि इंसान जब कोई अमल करता है तो उसका ताल्लुक आजाए जाहिरा से होता है जब तक अमल करता है। जैसे ही अमल पूरा होता है जाहिर में ये महसूस होता है कि अमल खत्म हो गया, लेकिन अब वो अमल का ताल्लुक दिल से हो जाता है। भैया जाहिर में ताल्लुक खत्म हो गया, अब वो अमल दिल में महफूज हो गया। समझ में आई इसकी इतनी बात? इसकी एक मिसाल समझो, एक इंसान है, गाड़ी लेके निकला, फास्ट फास्ट चला रहा था, बेचारे दो तीन आदमी साइड पे बैठे हुए थे, लेकिन उसको जो है ड्राइविंग में झोंका आ गया, नींद आ गई, दौरान ड्राइविंग झोंका आ गया और उसने गाड़ी साइड पर उतार दी और दो चार को मार डाला बेचारे को। अब वो गए बेचारे, मर गए। अब ये आदमी वहां से गाड़ी भगा के अपने घर आ गया, किसी को पता ही नहीं चला किसने मार डाला, भले वो मर गए। अब इस इंसान से जाहिर में एक अमल हो गया दो चार आदमी को मार डालने का, लेकिन उसके दिल में अफसोस रहेगा, अरे अरे मुझसे झोंके में दो चार आदमी का कत्ल हो गया था। इंसान जिंदगी भर याद रखता है। बाज मरतबा दोस्त अहबाब बैठे बैठे तस्करा गए, तूने कभी ड्राइविंग में कोई गलती की? हाँ भाई मैं बहुत माहिर ड्राइवर, लेकिन एक मरतबा झोंका मार के दो चार को बेचारों को सुला दिया था। हमेशा इंसान याद रखेगा, दिल में वो रहेगा। तो जितनी देर तक वो अमल जाहिरी आजा से मुतालिक था, लेकिन फिर कभी क्या, फिर जाहिर में खत्म हो गया तो वो अमल कहाँ आ जाएगा? दिल में महफूज हो जाएगा। किसी को गाली देते दे तो डाली, लेकिन जिंदगी भर पछताएगा, अरे अरे मैंने क्यों गाली दी थी, इतने बड़े सूफी साफी अल्लाह वाले को मैंने गाली दे दी थी। पूरी जिंदगी दिल में असर रहेगा उसे। जानवरों को ये नहीं होगा, जानवर जाहिर में अमल करेंगे वहां तक करेंगे, जाहिरी अमल खत्म, दिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। आप देखो भैंस भड़की शाम को, चर के आ रही थी, वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरऊन, और भड़की भैंस, और भैंस भड़की तो उसने एक साइकिल वाले को गिराया, आगे जाकर एक बाइक वाले को गिरा दिया, आगे एक चलते इंसान को गिरा दिया, दो चार को गिरा पटा करके पौड़ में पहुंची, तबेले में पहुंची, और वहां जाके आराम से घास खा रही है। अब भैंस के मालिक को शिकायत आई कि आपकी भैंस ने आज तीन एक्सीडेंट किए। अब वो गया भैंस के पास, कान पकड़ गए, अबे आज तूने तीन एक्सीडेंट किए, कुछ शर्म वरम है कि नहीं? भैंस पे कुछ पड़ी नहीं, वो आराम से घास खा रही है। जब तक अमल जाहिर में था वहां तक था, बाद में दिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये है इंसान और जानवर का फर्क, इंसान और जानवर का फर्क। अब इंसान के अंदर उसका असर रहेगा दिल के अंदर। यही हाल है अमल का भी कि जितनी देर तक नमाज पढ़ी, फिर जैसे ही जाहिर में नमाज खत्म हो गई, अब उसका ताल्लुक हो गया बातिन के साथ, और वो कयामत के दिन सामने आएगा। बातिन के अंदर जो नमाज का असर मौजूद है वो कयामत के दिन सामने आएगा, और वो चीज जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। फयुखरजून मिन्हा, तो लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे, वो काले काले हो गए। फयुल्कौन फी नहरिल हया, फिर इनको हया वाली नहर में डाला जाएगा या हयात वाली नहर में डाला जाएगा। इमाम मालिक को शक हो गया है, کہ حدیث میں حیا کا لفظ ہے یا حیات کا لفظ ہے؟ اب دونوں لفظ سمجھ لو. نہر حیا کس کو کہتے ہیں؟ نہر حیات کس کو کہتے ہیں؟ نہر حیا اور حیا مت کسر دونوں کس کو کہتے ہیں؟ بارش کی موسم میں پانی کی نالیاں جو بن جاتی ہے جس میں تازہ تازہ پانی بہنے لگتا ہے اس کو نہر حیا کہا جاتا ہے. بارش گری اور پانی کی نالیاں بہنے لگ گئی اس کو کہا جائے گا نہر حیا، پانی کی تازی تازی بنی ہوئی نہر. نہر الحیات کس کو کہتے ہیں؟ جس نہر میں ڈالنے سے، غوطہ لگانے سے انسان کو حیات اور زندگی نصیب ہو جاوے اس کو نہر حیات کہا جاتا ہے. جیسے آب حیات، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کو آب حیات کا قطرہ لگ گیا اور مچھلی زندہ ہو کر کے دریا میں چلی گئی. تو نہر حیات کا مطلب کیا؟ ایسی نہر کہ اس میں اگر کوئی غوطہ لگا دے وے تو زندگی نصیب ہو جائے. اب یہاں یہ لوگ کالے کالے پڑ گئے تھے جل کر کے، ان کو نہر حیات میں ڈالا گیا تو جس کی وجہ سے وہ گورے سفید اور ایک حیات نو لے کر کے یہ لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فی جانب السیلی، تو یہ لوگ اگ نکلیں گے جیسے کہ دانا سیل یعنی کانپ کوڑا سیلاب کے کنارے اگ نکلتا ہے. یعنی ان لوگوں کو، ان کالے کالے جہنمیوں کو، اہل ایمان جی کو جب وہ نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس کی برکت سے یہ کیا ہو جائیں گے؟ اگ نکلیں گے یعنی ترو تازہ ہو جائیں گے، خوبصورت بن جائیں گے، نہایت حسین جمیل بن جائیں گے. اور اس کو تشبیہ کیسے دی؟ جیسے کہ دانا، دانا ہے نا، دیکھو سیلاب کا ایک کوڑا ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں کانپ کہتے ہیں، کانپ والی زمین. تو سیلاب کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جو کنارے پر آ جاتا ہے، جو کانپ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس میں جو دانا ڈالو بہت جلدی اگ نکلتا ہے اور بہت جلدی وہ پودا تیار ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے سیلاب کے کوڑے کے اندر دانا بہت جلدی اگ کے بہترین پودا بن جاتا ہے، اس طرح یہ کالے کالے جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہر حیا یا حیات میں گرتے ہی یہ لوگ بہترین حسین جمیل خوبصورت فربا اور جنتیوں کی شکل میں ہو جائیں گے. کتنی بڑی اللہ کی مہربانی. اب لفظ حبا سمجھو، ہا کے فتح کے ساتھ حبتن پڑھے تو مطلق دانا، کمسل حبتن انبتت سبع سنابل، اور ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جنگلی دانا، جنگلی دانا. جنگلی دانے کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ ذرا سا پانی لگتا ہے وہ اگ نکلتا ہے، ذرا سا پانی لگتا ہے وہ اگ نکلتا ہے. دیکھو آپ بھی تجربہ کر لیں، کسان بیچارہ بیج خرید کے لائے گا، زمین میں ہل چلائے گا، کھاد ڈالے گا، بیج بوئے گا، پانی لگائے گا، دھیرے 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 اطمینان سے بیج صاف اگیں گے. اس کے علاوہ جو جنگلی دانے ہوتے ہیں نا، جو دیوار پر، چھجوں پر، ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، پہلی بارش لگی نہیں کہ وہ سب اگ نکلیں گے. آپ دیکھ لو، پہلی بارش لگی نہیں کہ وہ اگ نکلیں گے. یہ جنگلی دانوں کا کمال. تو جنگلی دانے کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا سی بھی بارش لگی وہ پھٹ سے اگ نکلیں گے، حالانکہ نہ کسی نے ان کے لیے ہل چلایا، نہ کسی نے کھاد ڈالا، نہ کسی نے اہتمام سے بویا، لیکن بارش لگی نہیں کہ وہ اگ نکلیں گے. यह है जंगली दाने का कमाल। तो जंगली दाना उग निकले के अंदर बहुत तेज होता है। तो कहा जिस तरीके से जंगली दाना मामूली पानी लगने पर फटाफट उग निकलता है, इस तरह इनको नहरे हया या हयात में डाला जाएगा तो ये फटाफट उग निकलने की तरह फरबा और तंदुरुस्त हो जाएंगे। और कहते हैं कि इसी जंगली दाने पर से एक लफ्ज बोला जाता है जो आपने न हुआ में मिसाल पढ़ी है, बकलतुल हमका, बेवकूफों की सब्जी, यानी जो जंगली घास चारा दाना उग निकलता है वो, उसको बेवकूफों की सब्जी इसलिए कहते हैं कि जिस तरीके से बेवकूफ आदमी होता है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कहाँ बोलना कहाँ सोना कहाँ जागना, उसको कुछ समझ में नहीं आता। इस तरीके से ये दाने का मामला है कि जमीन हो तो भी उगे, छज्जा हो तो भी उगे, दीवार पर हो तो भी उग निकले, पत्थर हो तो भी उग निकले, उसको कुछ पता ही नहीं कहाँ उगने का और कहाँ नहीं उगने का, कहीं भी वो उग निकलता है। इस तरीके की तासीर इस दाने के अंदर हुआ करती है। फी जानिब सैली, सैलाब की जानिब में, यानी कि सैलाब के किनारे का कूड़ा और करकट। अलम तरा, क्या तुमने ये बात नहीं देखी कि वो निकलता है पीला, यानी जो दाना निकलेगा उसकी कूपल पीली, मुल्तवीयतन, मुड़ता 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 मुड़ता, उसकी वजह से बड़ा खूबसूरत वो मालूम होता है, बड़ा प्यारा मालूम होता है। तो गोया हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो भाई, जर्रा बराबर भी जिसके दिल के अंदर ईमान है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निकालेंगे, नहरे हया हयात में डालेंगे, और डालने के बाद जो है वो लोग गोरे गोरे खूबसूरत हो जाएंगे। और जल के एकदम सूखे हो गए थे, पतले हो गए थे, मामूली हो गए थे, मुरझा गए थे, अब ये माशाल्लाह हरे भरे तरोताजा फरबा तंदुरुस्त जन्नतियों की साइज पर हो जाएंगे और जन्नत में मजे से चले जाएंगे, ये अल्लाह ताला के बंदे होंगे। अब इसमें तफाजुल कैसे साबित हुआ, तफाजु अहलिल ईमान। तो कहा बहुत से लोग शुरू से जन्नत में चले गए आमाल की कसरत की वजह से, बहुत से लोग अंबिया की सिफारिश से जन्नत में चले गए, उन्होंने ऐसे आमाल किए थे जिसकी बरकत से नबी की सिफारिश इनको मिल जाए, और कुछ बेचारे ऐसे कमजोर जिनके पास आमाल बहुत मामूली सा, जरा सा अमल, अरे चलो कोई अमल नहीं, लेकिन कल्बी अमल ईमान तो था, ईमान कल्बी, कल्बी अमल ईमान तो था उनके पास, वो भी अखीर में जहन्नम से निकाल करके तरोताजा बना करके जहन्नम में जन्नत में डाल पहुंचा दिए जाएंगे। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी और अल्लाह ताला के बहुत बड़े फजल व करम का मामला होगा। और वो 44 नंबर वाली रिवायत में अलग अलग अल्फाज है, इससे मालूम हुआ किसी का मामूली ईमान जौ के बराबर, किसी का चने के बराबर, किसी का गेहूं के दाने के बराबर, किसी का राई के दाने के बराबर। गर्ज ये कि जरा सा भी ईमान किसी के अंदर है तो ईमान भी तो एक कल्बी अमल है, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज देंगे। कौल वुहैबुन, हजरत वुहैब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वुहैब इब्ने खालिद, ये जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ला रहे हैं इसमें तीन फायदे हैं। हद्दसना अमरुन अलहया, हद्दसना लाकर के इमाम बुखारी यूं कहना चाहते हैं कि इमाम मालिक वाली जो सनद मैंने जिक्र की वो अन 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 वाली थी, और ये वुहैब रहमतुल्लाह अलैह वाली सनद में हद्दसना है, गोया कि इसमें तहदीस की सराहत है, एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि इस सनद में अम्र वाल नाम के रावी ये कहते हैं कि नहरुल हयात है, और वहां तो इमाम मालिक को शक था कि नहरे हया है या नहरे हयात, और यहाँ ताइन है कि हयात नहीं, हया नहीं, नहरे हयात। तो यहाँ ताइन हो गई, ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या हो गया? वकाल खर दलिम मिन खैरिन, वहां था मिन खर दलिम मिन ईमानिन, और यहाँ है मिन खर दलिम मिन खैरिन। और खैर का लफ्ज आम है, खैर का लफ्ज अमल पर भी बोला जाता है, और इसको अगर मुराद लेवे तो जरा सा अमल ईमान के साथ वो कयामत के दिन जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। और खैर वाली रिवायत की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत से वो मुरक्कब के ऊपर इस्तिदलाल भी नहीं कर सकते। गोया इस तरीक के जरिए तीन फायदे हो गए, इसलिए जो है इसको अलग से जिक्र किया गया। जी صلى الله عليه وسلم بين انا نائم ورايت الناس يعرضون علي وعليه يقول منها ما يكتب السنيه ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يذوبه قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال हज़रत मोहम्मद इब्ने उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी के उस्ताद है, कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की इब्राहिम इब्ने साद, ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो के पोते होते हैं। वो साले इब्ने कैसान से नकल करते हैं, वो इमाम इब्ने शिहाब जोहरी से नकल करते हैं, और वो अबू उमामा इब्ने सहल इब्ने हुनैफ से नकल करते हैं। अब जरा समझो, ये अबू उमामा जो है ना, उनका नाम असद है। अबू उमामा असद इब्ने सहल बिन हुनैफ, ये रूयतन सहाबी है, रूयतन सहाबी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुयत बासआदत इनको नसीब हुई है, रुयतन सहाबी। लेकिन रिवायतन ये ताबेई है, यानी सहाबी से ये हदीस नकल करते हैं। अब इतना समझ लिया, रुयतन सहाबी, रिवायतन ताबेई। अगर रुयतन सहाबी होने पर नजर करे तो इस सनद की खूबी यह हो जाएगी कि इस सनद में दो सहाबी हो जाएंगे। एक सहाबी हो गए अबू उमामा असद इब्ने सहल बिन हुनैब, और दूसरे सहाबी हो गए हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हु, बराबर। और अगर इनकी रिवायत का एतबार किए कि रिवायतन ये ताबेई है, तो फिर क्या होगा, तीन ताबेई एक दूसरे से रिवायत नकल कर रहे हैं, तीन ताबेई एक दूसरे से रिवायत नकल कर रहे हैं। इसीलिए के अबू उमामा ताबेई, इमाम इब्ने शिहाब ताबेई, साले ताबेई, तीन ताबेई एक दूसरे से रिवायत नकल कर रहे हैं। तो रिवायतन ये ताबेई है, तो रिवायत का एतबार किया जावे तो तीन ताबेई आपस में एक दूसरे से रिवायत नकल कर रहे हैं। और अगर रुयत का एतबार किया जाए तो सनद में दो सहाबी है और दो ताबेई है, ये है इस सनद की खूबी। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो को उन्होंने फरमाते हुए सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरमियान के मैं सोया हुआ था और मैंने लोगों को देखा कि मेरे सामने पेश किए गए, ये ख्वाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नबी का ख्वाब वही होता है कि ख्वाब में देखा कि बहुत सारे लोग मेरे सामने पेश किए गए, यानी मेरे सामने से गुजारे गए। पेश किए जाने का मतलब क्या, मेरे सामने से गुजारे गए, पास किए गए, बहुत से लोग गुजारे गए। और उनके बदन पर कमीज थे, सबने कमीज पहने हुए थे, ऐसे लोग मेरे सामने गुजारे गए। बहुत सोके कमीज सदी वाले हिस्से तक पहुंचे हुए थे। सदी की जमा सुदीय, और बहुत सों के कमीज इससे आगे बढ़े हुए थे, यानी जितने भी लोग मेरे सामने से गुजारे गए उनके बदन पर कुर्ते थे, किसी का कुर्ता छोटा सा, किसी का कुर्ता लंबा, किसी का और ज्यादा लंबा, जैसे बाज लोग इतना ही पहन दें, बाज इतना ही पहन दें, बाज इतना पहन दें, बाज नीचे तक पहन दें और बाज नीचे लबड़ता पहन दें। यह है कुमुसुन का मतलब कि हरेक के ऊपर अलग अलग साइज के कमीज, किसी के ऊपर यहीं तक, किसी को कमर तक, किसी को घुटनों तक, किसी को तखनों तक, और किसी के म्यूनिसिपालिटी के मुआविनीन तक। पिछले के बिल्कुल नीचे तक होगा तो म्यूनिसिपालिटी का काम आसान हो जाएगा, सफाई का, वही अपने कुर्तों से सफाई कर डालेंगे। ये अलग अलग कमीज की साइज देखिए। अब यहां मादून का लफ्ज समझो, लफ्ज मादून कमी बेशी दोनों के लिए मुस्तामल होता है, कमी बेशी दोनों के लिए। यहां बेशी मुराद है, याद रखना, यहां कमी मुराद नहीं है, क्या मुराद है, बेशी, यानी बहुत सो के कुर्ते पहलों की निस्बत ज्यादा नीचे थे, बहुत सों के कुर्ते पहलों की निस्बत ज्यादा नीचे बड़े हुए थे। कौलू, सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर ली? नहीं, एक जुमला रह गया, वह उरीदा अलैया उमर इब्नुल खत्ताबी, और बहुत सारे लोग गुजारे गए उसमें हजरत उमर बिन खत्ताब भी मेरे सामने पेश किए गए, और मैंने उनके ऊपर कमीज देखी तो वो तो खींचते जा रहे थे, यजुर रहो, यानी हजरत उमर की कमीज बहुत लंबी थी, और कमीज लंबी हो तो क्या हुए, यूं उठा के लेके चलना पड़े, बतकल्लुफ उठा के लेके चलना पड़े, और जो है नीचे घसीट, नहीं उठावे तो क्या होगा, नीचे घिसटता घिसटता चलेगा, और आदमी को चलने के अंदर सहूल आसानी नहीं होगी, सट्टा की सट्टा वो चलेगा। तो कहा हजरत उमर का कमीज बहुत लंबा था और वो घसीटे घसीटे चले जा रहे थे। एक नुक्ते की बात जहन में रखो, बेदारी में लंबी कमीज शरअन ममनू है और ख्वाब में लंबी कमीज अच्छी ताबीर है। बेदारी में आपने मसला पढ़ लिया ने, मा असफल मिनल काबैन मिनल इजार, वो नार। लेकिन ख्वाब में अगर कोई कमीज लंबा नजर आवे तो ये दीन और दीनी आमाल में दूसरों के मुकाबले में बड़े हुए होने की अलामत है कि आदमी दीन में दूसरों से बहुत आगे हैं, दीनी आमाल में दूसरों से बहुत आगे हैं, अच्छे कामों में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ये उसकी ताबीर निकलती है ख्वाब के अंदर जो है लंबा कुर्ता देखने की। कौलू, साहबा ने पूछा, आपने इसकी क्या ताबीर निकाली? के हुजूर, आपने क्या ताबीर निकाली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौल अद्दीन, यानी मैंने दीन की ताबीर निकाली, यानी छोटा कुर्ता उनके आमाल कम, लंबा कुर्ता उनके आमाल ज्यादा, और लंबा कुर्ता ज्यादा आमाल, और लंबा कुर्ता और ज्यादा उनके ईमान और आमाल। तो कुर्ते की साइज ईमान और आमाल की मिकदार, ये हो गया तफाजुलु आमाली अहलिल ईमान, हो गया तर्जमतुल बाब से मुनासबत तफाजु अहलिल ईमान, कि जिनकी कमी इस छोटी उनके ईमान आमाल में कमी, जिनकी बड़ी उनके आमाल ईमान में ज्यादती। तो कमीज की साइज ये है ईमान आमाल में कमी बेशी, इस तरीके से देखा। अब यहां एक दो बात समझ लो, कमीज की ताबीर दीन से कैसे, कमीज की ताबीर दीन से कैसे, तो दोनों के दरमियान एक लतीफ़ मुनासबत है। देखो जो चीज़ ख्वाब में नज़र आती है ना, उसकी ताबीर में कब लतीफ़ मुनासबत होती है, ऐसे वैसे ताबीर नहीं दे दी जाती, किसी मुनासबत से ताबीर होती है। तो यहाँ कमीज की ताबीर दीन से की गई, जिस तरीके से कमीज गुबार से हिफाजत का दरिया, दीन मासी से हिफाजत का जरिया। आपने कमीज पहनी तो आपके बदन को गर्दो गुबार नहीं लगेगा, कमीज को लग जाएगा। इस तरीके से दीन दीनदार को मासी और गुनाह से बचाने का जरिया बन जाता है। दूसरी बात समझो, हजरत उमर की कमीज सबसे लंबी और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु के ईमान आमाल सबसे ज्यादा। तो सवाल पैदा होता है ना, हजरत अबू बकर पर भी फजीलत हो गई है ना, इश्काल समझ में आया। हजरत उमर की कमीज सबसे लंबी, घसीटते चले जा रहे थे, तो हजरत उमर का दीनदारी मामला ईमान आमाल सबसे ज्यादा, तो हजरत उमर की फजीलत हो गई सबसे ज्यादा, हजरत अबू बकर से भी फजीलत बढ़ गई, इश्काल पैदा होगा ना। हालांकि हजरत अबू बकर की फजीलत ज्यादा है, और इस रिवायत से मालूम होता है कि हजरत उमर की फजीलत बढ़ गई। जवाब नंबर एक, हो सकता है कि यो अरदून अलैया में हजरत अबू बकर हो ही नहीं, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए गुजारे गए उसमें हजरत अबू बकर हो ही नहीं। कोई आदमी ये कहे कि आज क्लास में मुसाबका हुआ और अव्वल नंबर मेरा आया, अच्छा लालू मियां आपका अव्वल नंबर आया, कालू से भी आप बढ़ गए, नहीं आज कालू मुसाबके में थे ही नहीं, अच्छा इसीलिए आपका नंबर आया, वरना कालू के होते हुए आपका नंबर आ ही नहीं सकता, लेकिन आज वो थे ही नहीं मुसाबके में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक यो अरदून अलैया में थे ही नहीं, इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने की फजीलत। नंबर दो, जुजवी फजीलत। देखो हदीस पढ़ने वाले तलबा को कुछ जवाब पैटर्न याद रखने गए, उसमें से एक पैटर्न और इम्पोर्टेंट जवाब है जुजवी फजीलत कुल्ली फजीलत, ये हमेशा याद रखने का, तो बहुत से सवाल के जवाब में आसानी हो जाए, पर्चे में इम्तिहान में भी अपने को काम आवे। तो जी हाथ में जुजवी फजीलत कि भाई हजरत उमर को जुजवी फजीलत है हजरत अबू बकर के ऊपर, और जुजवी फजीलत की वजह से कुल्ली फजीलत हो नहीं जाती। तीसरा जवाब समझो, तस्केरा हजरत उमर का करना मकसूद था, हजरत उमर की फजीलत का तस्केरा करना मकसूद था। मुमकिन है कि हजरत अबू बकर की कमीज उनसे भी ज्यादा लंबी हो, मुमकिन है कि हजरत अबू बकर की कमीज हजरत उमर से भी ज्यादा लंबी हो, लेकिन तस्केरा करना था किसका, हजरत उमर की कमीज का, इसीलिए उनकी फजीलत बतलाने के लिए उनकी कमीज का तस्केरा कर दिया और हजरत अबू बकर की कमीज का तस्केरा नहीं किया गया। ये इश्काल के तीन जवाब हो गए। और भाई देखो, अब जाहिरी दुनिया ऐसी हो गई के लंबे लंबे कुर्ते दुल्हनों के रखे जाते हैं, और उसमें भी लंबाई में भी मुसाबका होता है। अभी अखबार में आया था कि दुनिया में एक जगह एक निकाह में एक दुल्हन ने इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा उसने वो जो है जुब्बा पहना था कुछ किलोमीटर की मकदार थी, किलोमीटर की मकदार। तो फिर गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड वाले वहां गए नापने के लिए, और फिर वो जो वो लोग रिकॉर्ड लेकर के वो गिनीस बुक और वर्ल्ड में वो नाम लेते हैं ना, उसमें फिर उसका नाम शामिल किया गया। और अब मुसलमानों में भी होने लगा, बहुत से मुसलमानों की शादियों में सुना गया कि दुल्हन को ऐसा लंबा सूट पहनाया गया कि छह सहेलियां इर्द गिर्द उसके सूट को लेकर के चल रही है, और दुल्हन बीच में खरामा खरामा चल के जा रही है। मुसलमानों में भी ऐसा होने लगा। तो जाहिरी दुनिया के अंदर ये कभी चीज है, ख्वाब में ये अच्छी चीज है,